लूका की इंजील बाब एक। चूंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाकई हुई उनको तरतीब वार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुंचाया, इसलिए ऐ मुअज्जिज थियोफिलुस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। यहूदिया के बादशाह हेरोदेस के जमाने में इबिया के फरीक में से जकरिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम एलीशेबा था, और वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकाम व कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे, और उनके औलाद ना थी क्योंकि एलीशेबा बांझ थी, और दोनों उम्र रसीदा थे जब वो खुदा के हुजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था। तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुरान निकला कि खुदावंद के मकदिस में जाकर खुशबू जलाए, और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मजबहे की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, और जकरिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई, मगर फरिश्ते ने उससे कहा,
आए जकरिया, खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी एलीशेबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे खुशी और खुर्रमी होगी, और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हुजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा, और अपनी माँ के पेट ही से रूह कुद्दस से भर जाएगा, और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा, और वो एलिया की रूह और कुवत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नौफरमानों को राजबाजों की दनाई के चलने की तरफ फेरे, और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे।
जकरिया ने फरिश्ते से कहा,
मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी उम्र रसीदा है।
फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा,
मैं जिब्राइल हूँ जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूँ, और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूँ और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूँ, और देख, जिस दिन तक ये बातें वाकई न होने तू चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया।
और लोग जकरिया की राह देखते और ताज्जुब करते थे कि उसे मक्तिस में क्यों देर लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, बस उन्होंने मालूम किया कि उसने मक्तिस में रोया देखी है, और वो उनसे इशारे करता था और गुंगा ही रहा। फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर गया। इन दिनों के बाद उसकी बीवी एलीशेबा हामिला हुई, और उसने 5 महीने तक अपने तय ये कहकर छुपाए रखा,
जब खुदावंद ने मेरी रुसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नजर की, उन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया।
6 महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में, जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा,
सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है।
वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा,
अरे मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख, तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔
مریم نے فرشتے سے کہا،
یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟
اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا،
روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گا، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور بھی تیری رشتے دار الیشیبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو واج کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔
مریم نے کہا،
دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔
تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الیشبا کو سلام کیا، اور جو ہی الیشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے پیٹ میں اچھل پڑا، اور الیشبا روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی،
تو عورتوں میں مبارک اور تیرے پیٹ کا پھل مبارک ہے، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی؟ کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی، بچہ مارے خوشی کے میرے پیٹ میں اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی۔
پھر مریم نے کہا،
میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام پاک ہے، اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا، اور جو اپنے تئیں بڑا سمجھتے تھے ان کو پراگندہ کیا۔ اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا اور پستھالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا، اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا، تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا۔
اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہ کر اپنے گھر کو لوٹ گئی، اور الیشبا کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کے خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی، اس کے ساتھ خوشی منائی، اور 8ویں دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کا ختنہ کرنے آئے، اور اس کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریا رکھنے لگے، مگر اس کی ماں نے کہا،
نہیں بلکہ اس کا نام یوحنا رکھا جائے۔
انہوں نے اس سے کہا،
تیرے کنبے میں کسی کا یہ نام نہیں۔
اور انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے تختی منگا کر یہ لکھا کہ اس کا نام یوحنا ہے، اور سب نے تعجب کیا۔ اسی دم اس کا منہ اور زبان کھل گئی، اور وہ بولنے اور خدا کی حمد کرنے لگا، اور ان کے آس پاس کے سب رہنے والوں پر دہشت چھا گئی، اور یہودیا کے تمام پہاڑی ملک میں ان سب باتوں کا چرچا پھیل گیا، اور سب سننے والوں نے ان کو دل میں سوچ کر کہا،
تو یہ لڑکا کیسا ہونے والا ہے،
کیونکہ خداوند کا ہاتھ اس پر تھا، اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا،
خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا، اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا، جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا، جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں، یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہم سے کھائی تھی، کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں۔ اور اے لڑکے، تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔
اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا، اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا۔ لوکا کی انجیل باب 2۔ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اوگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا،
ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔
یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورینیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ بس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا، جو یہودیا میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا،
ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیحی خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔
اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی یہ گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی،
عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلاح۔
جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا،
آؤ بیت لحم تک چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔
بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا، اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا۔ مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے پیٹ میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے،
ہر ایک پہلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا۔
اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں،
کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لاؤ۔
اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راستباز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا،
اے مالک، اب تو اپنے غلام کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔
اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی تعجب کرتے تھے، اور شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی اور اس کی ماں مریم سے کہا،
دیکھ، یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھٹ جائے گی، تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں۔
اور آشر کے قبیلے میں سے حنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوارپن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی، اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو پھر گئے، اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلیم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے موافق یروشلیم کو گئے۔ جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع یروشلیم میں رہ گیا، اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ ہوئی، مگر یہ سمجھ کر کہ وہ قافلے میں ہے ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے۔ جب نہ ملا تو اسے ڈھونڈتے ہوئے یروشلم تک واپس گئے، اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا، اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے، اور اس کی ماں نے اس سے کہا،
بیٹا، تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ، تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔
اس نے ان سے کہا،
تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟
مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے، اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں۔ اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ لوکا کی انجیل باب 3۔ تبریوس قیصر کی حکومت کے 15 برس جب پونتیوس پلاتوس یہودیہ کا حاکم تھا اور ہیرودیس گلیل کا، اور اس کا بھائی فلپس اتوریا اور ترخونیتس کا اور لسانیاس ابلینے کا حاکم تھا اور حنا اور کیفا سردار کاہن تھے، اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا پر نازل ہوا، اور وہ یردن کے سارے گرد نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرنے لگا، جیسا یسایا نبی کے کلام کی کتاب میں لکھا ہے،
بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ، ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ نیچا کیا جائے گا، اور جو ٹیڑھا ہے سیدھا اور جو اونچا نیچا ہے ہموار راستہ بنے گا، اور ہر بشار خدا کی نجات دیکھے گا۔
پس جو لوگ اس سے بپتسمہ لینے کو نکل کر آتے تھے وہ ان سے کہتا تھا،
اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ بس توبہ کے موافق پھل لاؤ
अपने दिलों में ये कहना शुरू ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है।
लोगों ने उससे पूछा,
फिर हम क्या करें?
उसने जवाब में उनसे कहा,
जिसके पास दो कुर्ते हो वो उसको जिसके पास ना हो बांट दे, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे।
और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे पूछा,
अरे उस्ताद हम क्या करें?
उसने उनसे कहा,
जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज्यादा ना लेना।
और सिपाहियों ने भी उससे पूछा,
हम क्या करें?
उसने उनसे कहा,
ना किसी पर जुल्म करो और ना किसी से नाहक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर किफायत करो।
जब लोग मुंतजर थे और सब अपने अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचते थे कि आया वो मसीह है या नहीं, तो यूहन्ना ने उन सब से जवाब में कहा,
मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मुझसे जोरावर है वो आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, वो तुम्हें रूलकुद और आग से बपतिस्मा देगा, उसका छाज उसके हाथ में है, ताकि वो अपने खलियान को खूब साफ करे और गेहूं को अपने खत्ते में जमा करे, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं।
बस वो और बहुत सी नसीहत करके लोगों को खुशखबरी सुनाता रहा। लेकिन चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की बीवी हेरोदियास के सबब से और उन सब बुराइयों के बाइस जो हेरोदेस ने की थी, यूहन्ना से मलामत उठाकर इन सब से बढ़कर ये भी किया कि उसको कैद में डाला। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूहुल कुद्स जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिंद उस पर नाजिल हुआ और आसमान से आवाज आई,
तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ।
जब यीशु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 बरस का था, और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था, और वो एली का, और वो मत्तात का, और वो लावी का, और वो मलकी का, और वो यन्ना का, और वो यूसुफ का, और वो मतत्तिया का, और वो आमोस का, और वो नाहुम का, और वो असलिया का, और वो नोगा का, और वो माअत का, और वो मतत्तिया का, और वो शिमी का, और वो योसिक का, और वो यूदा का, और वो यूहन्ना का, और वो रेसा का, और वो जरुब्बाबुल का, और वो सियालतियेल का, और वो नेरी का, और वो मलकी का, और वो अद्दी का, और वो खोसाम का, और वो इल्मोदाम का, और वो ईर का, और वो यीशु का, और वो इलियाजर का, और वो यूरीम का, और वो मत्तात का, और वो लावी का, और वो शमोन का, और वो यहूदा का, और वो यूसुफ का, और वो योनान का, और वो इल्याकीम का, और वो मलेआह का, और वो मिन्ना का, और वो मतत्या का, और वो नातन का, और वो दाऊद का, और वो यस्सी का, और वो ओबेद का, और वो बोअस का, और वो सलमोन का, और वो नहसून का, और वो अमीनदाब का, और वो अरनी का, और वो हसरून का, और वो फारिस का, और वो यहूदा का, और वो याकूब का, और वो इजहाक का, और वो अब्राहम का, और वो तारह का, और वो नहूर का, और वो सुरूज का, और वो रऊ का, और वो फलज का, और वो इबर का, और वो सिलह का, और वो कीनान का, और वो अरफक्सत का, और वो सिम का, और वो नूह का, और वो लमक का, और वो मतुसिला का, और वो हनोक का, और वो यारित का, और वो महलियल का, और वो कीनान का, और वो अनुस का, और वो सेत का, और वो आदम का, और वो खुदा का था। लुका की इंजील बाप 4। फिर यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ यर्दन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बयाबान में फिरता रहा, और इबलीस उसे आजमाता रहा, उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और इबलीस ने उससे कहा,
अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जा।
यीशु ने उसको जवाब दिया,
लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा।
और इबलीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई और उससे कहा,
ये सारा इख्तियार और उनकी शानो शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सिजदा करे तो ये सब तेरा होगा।
यीशु ने जवाब में उससे कहा,
लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर।
और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कंगूरे पर खड़ा करके उससे कहा,
अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबा अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करे, और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, मुबादा तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे।
यीशु ने जवाब में उससे कहा,
फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर।
जब इबलीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसे के लिए उससे जुदा हुआ। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिर्द नवाह में उसकी शोहरत फैल गई और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। और वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्त के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहाँ ये लिखा था,
खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया, उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं।
फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया और जितने इबादत खाने में थे सबकी आंखें उस पर लगी थीं। वो उनसे कहने लगा,
आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ है।
और सब ने उस पर गवाही दी और उन पुरफजल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी ताज्जुब करके कहने लगे,
क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं?
उसने उनसे कहा,
तुम अलबत्ता ये मसल मुझ पर कहोगे कि ऐ हकीम अपने आप को तो अच्छा कर, जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया यहाँ अपने वतन में भी कर।
और उसने कहा,
मैं तुमसे सच कहता हूँ कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता, और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 बरस आसमान बंद रहा यहाँ तक कि सारे मुल्क में सख्त काल पड़ा, बहुत सी बेवाएं इसराइल में थीं, लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास न भेजा गया मगर मुल्क सैदा के शहर सारपत में एक बेवा के पास। और एलीशा नबी के वक्त में इसराइल के दरमियान बहुत से कोढ़ी थे लेकिन उनमें से कोई पाक साफ न किया गया मगर नेमान सूर्या ने।
जितने इबादत खाने में थे इन बातों को सुनते ही गुस्से से भर गए और उठकर उसको शहर से बाहर निकाला और उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर आबाद था ताकि उसे सर के बल गिरा दें, मगर वो उनके बीच में से निकलकर चला गया। फिर वो गलील के शहर कफरनहूम को गया और सबके दिन उन्हें तालीम दे रहा था और लोग उसकी तालीम से हैरान थे क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ था اور عبادت خانے میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک دیو کی روح تھی۔ وہ بڑی آواز سے چلا اٹھا،
اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، تو خدا کا قدوس ہے۔
یسوع نے اسے جھڑک کر کہا،
چپ رہے اور اس میں سے نکل جا۔
اس پر بدرو اسے بیچ میں پٹک کر بغیر ضرر پہنچائے اس میں سے نکل گئی، اور سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے،
یہ کیسا کلام ہے، کیونکہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہے۔
اور گرد و نواح میں ہر جگہ اس کی دھوم مچ گئی۔ پھر وہ عبادت خانے سے اٹھ کر شمعون کے گھر میں داخل ہوا، اور شمعون کی ساس کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے لیے اس سے عرض کی۔ وہ کھڑا ہو کر اس کی طرف جھکا اور تب کو جھڑکا تو اتر گئی، اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ اور سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے انہیں اس کے پاس لائے، اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کیا، اور بدروہیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر،
تو خدا کا بیٹا ہے،
بہتوں میں سے نکل گئی، اور وہ انہیں جھڑکتا اور بولنے نہ دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ مسیح ہے۔ جب دن ہوا تو وہ نکل کر ایک ویران جگہ میں گیا، اور بھیڑ کی بھیڑ اس کو ڈھونڈتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کو روکنے لگی کہ ہمارے پاس سے نہ جا۔ اس نے ان سے کہا،
مجھے اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا ضرور ہے، کیونکہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں۔
اور وہ گلیل کے عبادت خانوں میں منادی کرتا رہا۔ لوکا کی انجیل باب 5۔ جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی، اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے دو کشتیاں لگی دیکھیں، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے۔ اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر، جو شمعون کی تھی، اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا،
گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔
شمعون نے جواب میں کہا،
اے صاحب، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔
یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے، اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ پس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دی کہ ڈوبنے لگی۔ شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا،
اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں۔
کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا، وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے۔ اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی، جو شمعون کے شریک تھے، حیران ہوئے۔ یسوع نے شمعون سے کہا،
خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔
وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب وہ ایک شہر میں تھا تو دیکھو، کوڑ سے بھرا ہوا ایک آدمی یسوع کو دیکھ کر منہ کے بل گرا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا،
اے خداون، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔
اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا،
میں چاہتا ہوں، تو پاک صاف ہو جا۔
اور فوراً اس کا کوڑ جاتا رہا، اور اس نے اسے تاکید کی،
کسی سے نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا، اور جیسا موسیٰ نے مقرر کیا ہے، اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔
لیکن اس کا چرچا زیادہ پھیلا، اور بہت سے لوگ جمع ہوئے کہ اس کی سنیں اور اپنی بیماریوں سے شفا پائیں۔ مگر وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا، اور فریسی اور شرع کے معلم وہاں بیٹھے تھے۔ جو گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیہ اور یروشلم سے آئے تھے، اور خداوند کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی۔ اور دیکھو، کئی مرد ایک آدمی کو جو مفلوج تھا چار پائے پر لائے اور کوشش کی کہ اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھیں، اور جب بھیڑ کے سبب سے اس کو اندر لے جانے کی راہ نہ پائی تو کوٹھے پر چڑھ کر کھپریل میں سے اس کو کھٹولے سمیت 20 میں یسوع کے سامنے اتار دیا۔ اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا،
اے آدمی، تیرے گناہ معاف ہو۔
اس پر فخی اور فریسی سوچنے لگے،
یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے؟ خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟
یسوع نے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے جواب میں ان سے کہا،
تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔
اس نے مفلوج سے کہا،
میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ اور اپنا کھٹولا اٹھا کر اپنے گھر جا۔
اور وہ اسی دم ان کے سامنے اٹھا جس پر پڑا تھا، اسے اٹھا کر خدا کی تمجید کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ وہ سب کے سب بڑے حیران ہوئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے، اور بہت ڈر گئے اور کہنے لگے،
آج ہم نے عجیب باتیں دیکھی۔
ان باتوں کے بعد وہ باہر گیا اور لاوی نام ایک محصول لینے والے کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا،
میرے پیچھے ہو لے۔
وہ سب کچھ چھوڑ کر اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ پھر لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضیافت کی، اور محصول لینے والوں اور اوروں کا جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے بڑا مجمع تھا، اور فریسی اور ان کے فقیہ اس کے شاگردوں سے یہ کہہ کر بڑبڑانے لگے،
تم کیوں محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟
یسوع نے جواب میں ان سے کہا،
تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو۔ میں راستبازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔
اور انہوں نے اس سے کہا،
یوحنا کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے اور دعائیں کیا کرتے ہیں، اور اسی طرح فریسیوں کے بھی، مگر تیرے شاگرد کھاتے پیتے ہیں۔
یسوع نے ان سے کہا،
کیا تم باراتیوں سے جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ مگر وہ دن آئیں گے جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے۔
اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی،
کوئی آدمی نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پرانی پوشاک میں پیوند نہیں لگاتا، ورنہ نئی بھی پھٹے گی اور اس کا پیوند پرانی میں میل بھی نہ کھائے گا۔ اور کوئی شخص نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتا، نہیں تو نئی میں مشکوں کو پھاڑ کر خود بھی بہ جائے گی اور مشکیں بھی برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرنا چاہیے۔ اور کوئی آدمی پرانی میں پی کر نئی کی خواہش نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی اچھی ہے۔
لوکا کی انجیل باب 6۔ پھر سب کے دن یوں ہوا کہ وہ کھیتوں میں ہو کر جا رہا تھا، اور اس کے شاگرد بانے توڑ توڑ کر اور ہاتھوں سے مل مل کر کھاتے جاتے تھے، اور فریسیوں میں سے بعض کہنے لگے،
تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو سبت کے دن کرنا روا نہیں؟
یسوع نے جواب میں ان سے کہا،
کیا تم نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں لے کر کھائیں، جن کو کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دی؟
پھر اس نے ان سے کہا،
ابن آدم سبت کا مالک ہے۔
اور یوں ہوا کہ کسی اور سبت کو وہ عبادت خانے میں داخل ہو کر تعلیم دینے لگا، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا دہنا ہاتھ سوکھ گیا تھا، اور فقیہ اور فریسی اس کی تاک میں تھے کہ آیا سبت کے دن اچھا کرتا ہے یا نہیں، تاکہ اس پر الزام لگانے کا موقع پائیں، مگر اس کو ان کے خیال معلوم تھے۔ پس اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا تھا کہا،
اٹھ اور بیچ میں کھڑا ہو۔
وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یسوع نے ان سے کہا،
میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ آیا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا ہلاک کرنا؟
اور ان سب پر نظر کر کے اس سے کہا،
अपना हाथ बढ़ा।
उसने बढ़ाया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। वो आपे से बाहर होकर एक दूसरे से कहने लगे,
हम यीशु के साथ क्या करें।
और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लखब दिया, यानी शमौन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास, और याकूब और यूहन्ना, और फिलिप्पुस और बर्तुलमाई, और मत्ती और तोमा, और हलफई का बेटा याकूब, और शमौन जो जेलोतीस कहलाता था, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला हुआ। और वो उनके साथ उतरकर हमवार जगह पर खड़ा हुआ, और उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और लोगों की बड़ी भीड़ वहां थी, जो सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा के बाहरी किनारे से उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए उसके पास आई थी। और जो नापाक रूहों से दुख पाते थे वो अच्छे किए गए, और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि कुव्वत उससे निकलती और सबको शिफा बख्शती थी। फिर उसने अपने शागिर्दों की तरफ नजर करके कहा,
मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तुम आसूदा होगे। मुबारक हो तुम जो अभी रोते हो, क्योंकि हंसोगे। जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लानतान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तो तुम मुबारक होगे। उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अज्र बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा भी नबियों के साथ ऐसा ही करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब शेर हो, क्योंकि तुम भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि तुम मातम करोगे और रोगे। अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो। जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो। जो तुम्हारी बेइज्जती करें उनके लिए दुआ करो। जो तेरे गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा चोगा ले उसको कुर्ता लेने से भी मना न कर। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरा माल ले ले उससे तलब न कर। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से ही मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करें, तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी ऐसा ही करते हैं। और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो, तो तुम्हारा क्या एहसान है, गुनहगार भी गुनहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल कर लें। मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो, और बगैर नाउम्मीद हुए कर्ज दो, तो तुम्हारा अज्र बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है। जैसा तुम्हारा बाप रहीम है, तुम भी रहम दिल हो। ऐब जोई न करो, तुम्हारी भी ऐब जोई न की जाएगी। मुजरिम न ठहराओ, तुम भी मुजरिम न ठहराए जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा।
और उसने उनसे एक तमसील भी कही,
क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों गढ़े में न गिरेंगे? शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हरेक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शहतीर पर गौर नहीं करता? और जब तू अपनी आंख के शहतीर को नहीं देखता, तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि भाई ला उस तिनके को जो तेरी आंख में है निकाल दूं। اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر کو نکال، پھر اس تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا، کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے، اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے۔ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھڑبیری سے انگور۔ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے۔ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ جو کوئی میرے پاس آتا ہے اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے تو میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے۔ وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی، جب رو آئی تو دھار اس گھر پر زور سے گری مگر اسے ہلا نہ سکی، کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا۔ لیکن جو سن کر عمل میں نہیں لاتا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا، جب دھار اس پر زور سے گری تو وہ فیل فور گر پڑا اور وہ گھر بالکل برباد ہو گیا۔
لوکا کی انجیل باب 7۔ جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سنا چکا تو کفرنہوم میں آیا، اور کسی صوبے دار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا۔ اس نے یسوع کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر۔ وہ یسوع کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے،
وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے، کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانے کو اسی نے بنوایا۔
یسوع ان کے ساتھ چلا، مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبے دار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے یہ کہلا بھیجا،
اے خداون تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے کے لائق نہ سمجھا، بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے یہ کر تو وہ کرتا ہے۔
یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا،
میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔
اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر میں واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا۔ تھوڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا، اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردے کو باہر لیے جاتے تھے، وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بہت تیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا،
مت رو۔
پھر اس نے پاس آ کر جنازے کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا،
اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔
وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا، اور سب پر دہشت چھا گئی اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے،
ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے
اور
خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے۔
اور اس کی نسبت یہ خبر سارے یہودیہ اور تمام گرد و نواح میں پھیل گئی، اور یوحنا کو اس کے شاگردوں نے ان سب باتوں کی خبر دی۔ اس پر یوحنا نے اپنے شاگردوں میں سے دو کو بلا کر خداوند کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا،
آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟
انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا،
یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں۔
اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بخشی، اور بہت سے اندھوں کو بینائی عطا کی۔ اس نے جواب میں ان سے کہا،
جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے جا کر یوحنا سے بیان کر دو، کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑھی پاک صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔
جب یوحنا کے خاصے چلے گئے تو یسوع یوحنا کے حق میں لوگوں سے کہنے لگا،
تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرگنڈوں کو؟ تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو؟ دیکھو، جو چمکدار پوشاک پہنتے اور عیش و عشرت میں رہتے ہیں وہ بادشاہی محلوں میں ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ایک نبی کو؟ ہاں میں تم سے کہتا ہوں، بلکہ نبی سے بڑے کو۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ، میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں، جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا نہیں، لیکن جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔
اور سب عام لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے اور محصول لینے والوں نے بھی یوحنا کا بپتسمہ لے کر خدا کو راستباز مان لیا، مگر فریسیوں اور شرع کے عالموں نے اس سے بپتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادے کو اپنی نسبت باطل کر دیا۔
پس اس زمانے کے لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دوں؟ وہ کس کی مانند ہیں؟ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازار میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے، ہم نے ماتم کیا اور تم نہ روئے۔ کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والا نہ تو روٹی کھاتا ہوا آیا اور نہ میں پیتا ہوا، اور تم کہتے ہو کہ اس میں بدرو ہے۔ ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور تم کہتے ہو کہ دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی، محصول لینے والوں اور گنہگاروں کا یار۔ لیکن حکمت اپنے سب لڑکوں کی طرف سے راست ثابت ہوئی۔
پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا۔ پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو ایک بچلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کے عطر دان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا،
اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے، کیونکہ یہ بچلن ہے۔
یسو نے جواب میں اس سے کہا،
اے شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔
اس نے کہا،
اے استاد کہہ۔
کسی ساہوکار کے دو قرضدار تھے، ایک 500 دینار کا، دوسرا 50 کا۔ جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا، بس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟
شمعون نے جواب میں کہا،
میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا۔
اس نے اس سے کہا،
تو نے ٹھیک فیصلہ کیا۔
اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا،
کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پوچھا۔ تو نے مجھ کو بوسا نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا ہے۔ اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔
اور اس عورت سے کہا،
تیرے گناہ معاف ہوئے۔
اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے،
یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے؟
مگر اس نے عورت سے کہا،
تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا۔
لوکا کی انجیل باب 8۔ تھوڑے عرصے کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا، اور وہ 12 اس کے ساتھ تھے۔ اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی، یعنی مریم جو مگدلینی کہلاتی تھی، جس میں سے 7 بدروحیں نکلی تھیں، اور یوانا ہیرودیس کے دیوان خزا کی بیوی، اور سوسنا، और बहुतेरी और औरतें भी थीं जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थीं। फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई और हर शहर के लोग उसके पास चले आते थे, उसने तमसील में कहा,
एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया और कुछ चट्टान पर गिरा और उखड़ सूख गया इसलिए कि उसको तरी न पहुंची और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उखड़ 100 गुना फल लाया।
यह कहकर उसने पुकारा,
जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले।
उसके शागिर्दों ने उससे पूछा,
ये तमसील क्या है?
उसने कहा,
तुमको खुदा की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है ताकि देखते हुए न देखें और सुनते हुए न समझें। वो तमसील ये है कि बीच खुदा का कलाम है, राह के किनारे के वो हैं जिन्होंने सुना, फिर इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है, ऐसा न हो कि ईमान लाकर नजात पाएं। और चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अरसे तक ईमान रखकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। और जो झाड़ियों में पड़ा उससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना, लेकिन होते होते इस जिंदगी की फिक्रों और दौलत और ऐशो इशरत में फंस जाते हैं और उनका फल पकता नहीं। मगर अच्छी जमीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते हैं और सब से फल लाते हैं। कोई शख्स चराग जलाकर बर्तन से नहीं छिपाता न पलंग के नीचे रखता है, बल्कि चराग दान पर रखता है ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे, क्योंकि कोई चीज छिपी नहीं जो जाहिर न हो जाएगी और न कोई ऐसी पोशीदा बात है जो मालूम न होगी और जहूर में न आएगी। बस खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा जो अपना समझता है।
फिर उसकी माँ और उसके भाई उसके पास आए, मगर भीड़ के सबब से उस तक ना पहुँच सके और उसे खबर दी गई,
तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं।
उसने जवाब में उनसे कहा,
मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं।
फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा,
आओ झील के पार चलें।
बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरे में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा,
साहेब साहेब, हम हलाक हुए जाते हैं।
उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा,
तुम्हारा ईमान कहाँ गया?
वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे,
ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी बात मानते हैं।
फिर वो गरासीनियों के इलाके में जा पहुँचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थी। उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे और वो घर में नहीं बल्कि खबरों में रहा करता था। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा,
आ यीशु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अजाब में न डाल।
क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़कर काबू में रखते थे, तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था और बदरू उसको बयाबानों में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा,
तेरा क्या नाम है?
उसने कहा, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थी और वो उसकी मिन्नत करने लगी,
हमें अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म ना दे।
वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा गोल चर रहा था उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उनके अंदर जाने दे। उसने उन्हें जाने दिया और बदरूहें उस आदमी में से निकलकर सुअरों के अंदर गईं और गौल कराड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। ये माजरा देखकर चराने वाले भागे और जाकर शहर और देहात में खबर दी। लोग उस माजरे के देखने को निकले और यीशु के पास आकर उस आदमी को जिसमें से बदरूहें निकली थीं, कपड़े पहने और होश में यीशु के पांव के पास बैठे पाया और डर गए। और देखने वालों ने उनको खबर दी कि जिसमें बदरूहें थी वो किस तरह अच्छा हुआ। और गरासिनियों के गिर्द नवाह के सब लोगों ने उससे दरखास्त की कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ी दहशत छा गई थी। बस कश्ती में बैठकर वापस गया, लेकिन जिस शख्स में से बदरूहें निकल गई थी उसकी मिन्नत करके कहने लगा,
मुझे अपने साथ रहने दे।
मगर यीशु ने उसे रुखसत करके कहा,
अपने घर लौटकर लोगों से बयान कर कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए।
वो रवाना होकर तमाम शहर में चर्चा करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। जब यीशु वापस आ रहा था तो लोग उससे खुशी के साथ मिले, क्योंकि सब उसकी राह तकते थे। और देखो, याईर नाम एक शख्स जो इबादत खाने का सरदार था आया और यीशु के कदमों पर गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 बरस की थी मरने को थी। और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा,
वो कौन है जिसने मुझे छुआ?
जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा,
ए साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं।
मगर यीशु ने कहा,
किसी ने मुझे छुआ तो है, मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है।
जब उस औरत ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। उसने उससे कहा,
बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा।
वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के हाथ से किसी ने आकर कहा,
तेरी बेटी मर गई, उस्ताद को तकलीफ न दे।
यीशु ने सुनकर उसे जवाब दिया,
खौफ न कर, फकत एतकाद रख, वो बच जाए।
और घर में पहुंचकर पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अंदर ना जाने दिया और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। मगर उसने कहा,
रो नहीं, वो मर नहीं गई बल्कि सोती है।
वो उस पर हंसने लगे क्योंकि जानते थे कि वो मर गई है। मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा,
ए लड़की, उठ।
उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी। फिर यीशु ने हुक्म दिया,
लड़की को कुछ खाने को दिया जाए।
उसके माँ बाप हैरान हुए और उसने उन्हें ताकीद की,
ये माजरा किसी से न कहना।
लूका की इंजील बाब 9। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर और बीमारियों को दूर करने के लिए कुदरत और इख्तियार बख्शा और उन्हें खुदा की बादशाही की मनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा और उनसे कहा,
राह के लिए कुछ न लेना, न लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपये, न दो दो कुर्ते रखना, और जिस घर में दाखिल हो वही रहना और वहीं से रवाना होना, और जिस शहर के लोग तुम्हें कबूल न करें उस शहर से निकलते वक्त अपने पांव की गर्द झाड़ देना, ताकि उन पर गवाही हो।
बस वो रवाना होकर गांव-गांव खुशखबरी सुनाते और हर जगह शिफा देते फिरे। और चौथाई मुल्क का हाकिम हेरोदेस सब अहवाल सुनकर घबरा गया, इसलिए कि बाज ये कहते थे,
यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है,
और बाज ये के
एलिया जाहिर हुआ है,
और बाज ये
कदीम नबियों में से कोई जी उठा है।
मगर हेरोदेस ने कहा,
यूहन्ना का तो मैंने सर कटवा दिया,
अब ये कौन है जिसकी बाबत ऐसी बातें सुनता हूँ?
फिर उसे देखने की कोशिश में रहा। फिर रसूलों ने जो कुछ किया था लौटकर उससे बयान किया और वो उनको अलग लेकर बैतसैदा नाम एक शहर को चला गया। ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई और वो खुशी के साथ उनसे मिला और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा, और जो शिफा पाने के मोहताज थे उन्हें शिफा बख्शी। जब दिन ढलने लगा तो उन बारह ने आकर उससे कहा,
भीड़ को रुखसत कर कि चारों तरफ के गांवों और बस्तियों में जा टिकें और खाने की तदबीर करें, क्योंकि हम यहाँ वीरान जगह में हैं।
उसने उनसे कहा,
तुम ही उन्हें खाने को दो।
उन्होंने कहा,
हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों से ज्यादा मौजूद नहीं, मगर हाँ हम जाकर इन सब लोगों के लिए खाना मोल ले आए।
क्योंकि वो 5,000 मर्द के करीब थे, उसने अपने शागिर्दों से कहा,
उनको तखमीनन 50-50 की कतारों में बिठाओ।
उन्होंने उसी तरह किया और सबको बिठाया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। उन्होंने खाया और सब सैर हो गए और उनके बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां उठाई गईं। जब वो तन्हाई में दुआ कर रहा था और शागिर्द उसके पास थे, तो ऐसा हुआ कि उसने उनसे पूछा,
लोग मुझे क्या कहते हैं?
उन्होंने जवाब में कहा,
कुछ लोग तुझको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और बाज एलिया कहते हैं,
और बाज ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है।
उसने उनसे कहा,
लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो?
पतरस ने जवाब में कहा,
खुदा का मसीह।
उसने उनको ताकीद करके हुक्म दिया कि ये किसी से ना कहना और कहा,
जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीह उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे।
और उसने सबसे कहा,
अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वही उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को खो दे या उसका नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने और अपने बाप के और पाक फरिश्तों के जलाल में आएगा तो उससे शर्माएगा। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि उनमें से जो यहाँ खड़े हैं बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को न देख लें, मौत का मजा हरगिज न चखेंगे।
फिर इन बातों के कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बुर्राक हो गई, और देखो 2 शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलम में वाकई होने को था। मगर पतरस और उसके साथी नींद में भरे थे, और जब अच्छी तरह बेदार हुए तो उसके जलाल को और उन 2 शख्सों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। जब वो उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने यीशु से कहा,
ऐ साहिब, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए।
लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया, और जब वो बादल में घिरने लगे तो डर गए, और बादल में से एक आवाज आई,
ये मेरा बनपुत्रा बेटा है, इसकी सुनो।
ये आवाज आते ही यीशु अकेला पाया गया और वो चुप रहे, और जो बातें देखी थी उन दिनों में किसी को उनकी कुछ खबर न दी। दूसरे दिन जब वो पहाड़ से उतरे थे तो ऐसा हुआ कि एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो एक आदमी ने भीड़ में से चिल्ला कर कहा,
अरे उस्ताद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरे बेटे पर नजर कर, क्योंकि वो मेरा इकलौता है, और देखो उसे एक रूह पकड़ लेती है और वो एकाएक चीख उठता है और उसको ऐसा मरोड़ती है कि कब भर लाता है और उसको कुचल कर मुश्किल से छोड़ती है। اور میں تیرے شاگردوں کی منت کی کہ اسے نکال دے، لیکن وہ نہ نکال سکے۔
یسو نے جواب میں کہا،
اے بے اعتقاد اور کجر و قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری برداشت کروں گا؟ اپنے بیٹے کو یہاں لیا۔
وہ آتا ہی تھا کہ بدروح نے اسے پٹک کر مروڑا، اور یسو نے اس ناپاک روح کو جھڑکا اور لڑکے کو اچھا کر کے اس کے باپ کو دے دیا۔ اور سب لوگ خدا کی شان کو دیکھ کر حیران ہوئے، لیکن جس وقت سب لوگ ان سب کاموں پر جو وہ کرتا تھا تعجب کر رہے تھے، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا،
تمہارے کانوں میں یہ باتیں پڑی رہیں، کیونکہ ابن آدم آدمیوں کے ہاتھوں میں حوالے کیے جانے کو ہے۔
لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے، بلکہ یہ ان سے چھپائی گئی تاکہ اسے معلوم نہ کریں، اور اس بات کی بابت اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے۔ پھر ان میں یہ بحث شروع ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، لیکن یسو نے ان کے دلوں کا خیال معلوم کر کے ایک بچے کو لیا اور اپنے پاس کھڑا کر کے ان سے کہا،
جو کوئی اس بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے، کیونکہ تم میں جو سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے۔
یوحنا نے جواب میں کہا،
اے صاحب، ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروحے نکالتے دیکھا اور اس کو منع کرنے لگے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ تیری پیروی نہیں کرتا۔
لیکن یسو نے اس سے کہا،
اسے منع نہ کرنا، کیونکہ جو تمہارے خلاف نہیں وہ تمہاری طرف ہے۔
جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے، تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم جانے کو کمر باندھی اور اپنے آگے خاصد بھیجے۔ وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں، لیکن انہوں نے اس کو ٹکنے نہ دیا کیونکہ اس کا رخ یروشلم کی طرف تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے کہا،
اے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے جیسا ایلیا نے کیا؟
مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا،
تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو، کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا۔
پھر وہ کسی اور گاؤں میں چلے گئے۔ جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا،
جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔
یسو نے اس سے کہا،
لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔
پھر اس نے دوسرے سے کہا،
میرے پیچھے چل۔
اس نے کہا،
آئے خداون، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔
اس نے اس سے کہا،
مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔
ایک اور نے بھی کہا،
اے خداون، میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہوں۔
یسو نے اس سے کہا،
جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔
لوکا کی انجیل باب 10۔ ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے، اور جس جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں دو دو کر کے اپنے آگے بھیجا، اور وہ ان سے کہنے لگا،
فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ جاؤ، دیکھو، میں تم کو گویا بروں کو بھیڑیوں کے بیچ میں بھیجتا ہوں۔ نہ بٹوا لے جاؤ، نہ جھولی، نہ جوتیاں، اور نہ راہ میں کسی کو سلام کرو، اور جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کی سلامتی ہو۔ اگر وہاں کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، نہیں تو تم پر لوٹ آئے گا۔ اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے کھاؤ پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ گھر گھر نہ پھرو، اور جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ، اور وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو، اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے۔ لیکن جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں تو ان کے بازاروں میں جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں میں لگی ہے تمہارے سامنے جھاڑے دیتے ہیں، मगर ये जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ पहुंची है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन सदोम का हाल उस शहर के हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। ए खुराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैत सैदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजूदे तुम में जाहिर हुए अगर सूर और सैदा में जाहिर होते तो वो टाट ओढ़ कर और खाक में बैठ कर कब के तौबा कर लेते, मगर अदालत में सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ए कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? नहीं, बल्कि तू आलम अरवाह में उतारा जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता, और जो मुझे नहीं मानता वो मेरे भेजने वाले को नहीं मानता।
वह 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे,
आए खुदावन, तेरे नाम से बदरुए भी हमारे ताबे हैं।
उसने उनसे कहा,
मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर न पहुंचेगा। तो भी इससे खुश न हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं।
उसी घड़ी वो रूहुल कुद्स से खुशी में भर गया और कहने लगा,
ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अकलमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवा बेटे के, और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहिए।
और शागिर्दों की तरफ मुतवज्जह होकर खास उन्हीं से कहा,
मुबारक है वो आंखें जो ये बातें देखती हैं, जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें मगर न देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर न सुनी।
और देखो, एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा,
अरे उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं?
उसने उससे कहा,
तो रेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है?
उसने जवाब में कहा,
खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख।
उसने उससे कहा,
तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा।
मगर उसने अपने तई रास्तबाज ठहराने की गरज से यीशु से पूछा,
फिर मेरा पड़ोसी कौन है?
यीशु ने जवाब में कहा,
एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया, और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा, और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगीरी की। दूसरे दिन 2 दीनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगीरी करना, और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था तेरी दानिश्त में कौन पड़ोसी ठहरा?
उसने कहा,
वो जिसने उस पर रहम किया।
यीशु ने उससे कहा,
जा, तू भी ऐसा ही कर।
फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ, और मर्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मर्था खिदमत करते करते घबरा गई, बस उसके पास आकर कहने लगी,
ऐ खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे।
खुदावंद ने जवाब में उससे कहा,
मर्था मर्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है कि मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा।
लूका के इंजील बाब 11। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा,
आए खुदावन, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा।
उसने उनसे कहा,
जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारी रोज की रोटी हर रोज हमें दिया कर, और हमारे गुनाह मुआफ कर, क्योंकि हम भी अपने हर कर्जदार को मुआफ करते हैं, और हमें आजमाइश में न ला।
फिर उसने उनसे कहा,
तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ऐ दोस्त, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं, और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ न दे, अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछोने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे न दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा?
फिर वो ये गूंगी बदरूह को निकाल रहा था, और जब वो बदरूह निकल गई तो ऐसा हुआ कि गूंगा बोला और लोगों ने ताज्जुब किया, लेकिन उनमें से बाज ने कहा,
ये तो बदरूहों के सरदार बालजबूल की मदद से बदरूहों को निकालता है।
बाज और लोग आजमाइश के लिए उससे एक आसमानी निशान तलब करने लगे, मगर उसने उनके ख्यालात को जानकर उनसे कहा,
जिस सल्तनत में फूट पड़े वो वीरान हो जाती है, और जिस घर में फूट पड़े वो बर्बाद हो जाता है, और अगर शैतान खुद अपना मुखालिफ हो जाए तो उसकी सल्तनत किस तरह कायम रहेगी? क्योंकि तुम मेरी बाबत कहते हो कि ये बदरूहों को बालजबूल की मदद से निकालता है, लेकिन अगर मैं बदरूहों को बालजबूल की मदद से निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? चुनाचे वही तुम्हारे मुनसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं बदरूहों को खुदा की कुदरत से निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची है। जब एक जोरावर आदमी अपने हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन जब उससे कोई जोरावर हमला करके उस पर गालिब आता है तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरी तरफ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जिससे निकली हूं, और आकर उसे झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमराह ले आती है, और वो उसमें दाखिल होकर वहां बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी खराब हो जाता है।
जब वो ये बातें कह रहा था तो ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उससे कहा,
मुबारक है वो पेट जिसमें तू रहा और वो छातियाँ जो तूने चूसी।
उसने कहा,
हाँ, मगर ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं।
जब बड़ी भीड़ जमा होती जाती थी तो वो कहने लगा,
इस जमाने के लोग बुरे हैं, वो निशान तलब करते हैं, मगर यूना के निशान के सिवा कोई और निशान उनको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह यूना निनवे के लोगों के लिए निशान ठहरा, इसी तरह इब्ने आदम भी इस जमाने के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्षिण की मलिका इस जमाने के आदमियों के साथ अदालत के दिन उठकर उनको मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। निनवे के लोग इस जमाने के लोगों के साथ अदालत के दिन खड़े होकर उनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तौबा कर ली। और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। कोई शख्स चराग जलाकर तहखाने में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, बल्कि चरागदान पर रखता है ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे। तेरे बदन का चराग तेरी आंख है। जब तेरी आंख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन भी रोशन है, और अगर खराब है तो तेरा बदन भी तारीख है। बस देखना जो रोशनी तुझमें है तारीखी तो नहीं। बस अगर तेरा सारा बदन रोशन हो और कोई हिस्सा तारीख न रहे तो वो तमाम ऐसा रोशन होगा जैसा उस वक्त होता है जब चराग अपनी चमक से तुझे रोशन करता है।
जब वो बात कर रहा था तो किसी फरीसी ने उसकी दावत की, बस वो अंदर जाकर खाना खाने बैठा। फरीसी ने यह देखकर ताज्जुब किया कि उसने खाने से पहले गुस्ल नहीं किया। खुदावंद ने उससे कहा,
ऐ फरीसियों, तुम प्याले और रकाबी को ऊपर से तो साफ करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर लूट और बदी भरी है। ऐ नादानो, जिसने बाहर को बनाया क्या उसने अंदर को नहीं बनाया? हाँ, अंदर की चीजें खैरात कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए पाक होगा। लेकिन ऐ फरीसियो, तुम पर अफसोस कि पुदीने और सुदाब और हर एक तरकारी पर दहेकी देते हो और इंसाफ और खुदा की मोहब्बत से गाफिल रहते हो। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ऐ फरीसियो, तुम पर अफसोस कि तुम इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और बाजारों में सलाम चाहते हो। तुम पर अफसोस क्योंकि तुम उन पोशीदा कब्रों की मानिंद हो जिन पर आदमी चलते हैं और उनको इस बात की खबर नहीं।
फिर शरा के आलिमों में से एक ने जवाब में उससे कहा,
ऐ उस्ताद, इन बातों के कहने से तू हमें भी बेइज्जत करता है।
उसने कहा,
ऐ शरा के आलिमों, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना मुश्किल है आदमियों पर लादते हो, और आप एक उंगली उन बोझों को नहीं लगाते। तुम पर अफसोस कि तुम तो नबियों की कब्रों को बनाते हो और तुम्हारे बाप दादा ने उनको कत्ल किया था। बस तुम गवाह हो और अपने बाप दादा के कामों को पसंद करते हो, क्योंकि उन्होंने तो उनको कत्ल किया था और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए खुदा की हिकमत ने कहा है कि मैं नबियों और रसूलों को उनके पास भेजूंगी, वो उनमें से बास को कत्ल करेंगे और बास को सताएंगे, ताकि सब नबियों के खून की जो बिनाए आलम से बहाया गया इस जमाने के लोगों से बास बुर्स की जाए। हाबिल के खून से लेकर इस जकरयाह के खून तक जो कुर्बान गा और मकदस के बीच में हलाक हुआ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इसी जमाने के लोगों से सबकी बास बुर्स की जाएगी। ऐ शरा के आलिमो, तुम पर अफसोस कि तुमने मारिफत की कुंजी छीन ली। तुम आप भी दाखिल न हुए और दाखिल होने वालों को भी रोका।
जब वो वहाँ से निकला तो फकी और फरीसी उसे बेतराह चिमटने और छेड़ने लगे, ताकि वो बहुत सी बातों का जिक्र करे और उसकी घात में रहे, ताकि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। लूका की इंजील बाब 12। इतने में जब हजारों आदमियों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरा पड़ता था, तो उसने सबसे पहले अपने शागिर्दों से ये कहना शुरू किया,
उस खमीर से होशियार रहना जो फरीसियों की रियाकारी है, क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली न जाएगी, और न कोई चीज छिपी है जो जानी न जाएगी। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों के अंदर कान में कहा है कोठों पर उसकी मनादी की जाएगी। मगर तुम दोस्तों से मैं कहता हूँ, उनसे न डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं तुम्हें जताता हूँ कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसे इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नम में डाले। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि उसी से डरो। क्या दो पैसे की पांच चिड़िया नहीं बिकती, तो भी खुदा के हुजूर उनमें से एक भी फरामोश नहीं होती, बल्कि तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं। डरो मत, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा, मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इनकार किया जाएगा, और जो इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहे उसको मुआफ किया जाएगा, लेकिन जो रूहुल कुद्स के हक में कुफ्र बके उसको मुआफ न किया जाएगा। और जब वो तुमको इबादत खानों में और हाकिमों और इख्तियार वालों के पास ले जाएं, तो फिक्र न करना कि हम किस तरह या क्या जवाब दें या क्या कहें, क्योंकि रूहुल कुद्स उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए।
फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा,
अरे उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मीरास का मेरा हिस्सा मुझे दे।
उसने उससे कहा,
मियाँ, किसने मुझे तुम्हारा मुनसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है?
और उसने उनसे कहा,
खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं।
और उसने उनसे एक तमसील कही,
किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई, बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे हाथ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा, और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, है नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है, वो खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं।
फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा,
इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र न करो कि हम क्या खाएंगे, और न अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। कौओं पर गौर करो कि न बोते हैं और न काटते, न उनके खत्ता होता है न कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कद्र तो परिंदों से कहीं ज्यादा है, तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके? बस जब सबसे छोटी बात भी नहीं कर सकते तो बाकी चीजों की फिक्र क्यों करते हो? सोसन के दरख्तों पर गौर करो कि किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते हैं न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानिंद मुलब्बस न था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम एतिकादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा? और तुम इसकी तलाश में न रहो कि क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न शक्की बनो, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं। लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। हाँ, उसकी बादशाही की तलाश में रहो तो ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। ऐ छोटे गल्ले, न डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। अपना मालो असबाब बेचकर खैरात कर दो और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता, जहां चोर नजदीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता, क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। तुम्हारी कमरें बंधी रहें, तुम्हारे चराग चलते रहें, तुम उन आदमियों के मानिंद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हैं कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाजा खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दें। मुबारक हैं वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। अगर वो रात को दूसरे या तीसरे पहर में आकर उनको ऐसे हाल में पाए तो वो नौकर मुबारक हैं। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी न होगा इब्ने आदम आ जाएगा।
पतरस ने कहा,
ऐ खुदावन, तू ये तमसील हम ही से कहता है या सबसे?
खुदावन ने कहा,
کون ہے وہ دیانتدار اور عقل مند داروغا جس کا مالک اسے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کرے کہ ہر ایک کی خوراک وقت پر بانٹ دیا کرے؟ مبارک ہے وہ نوکر جس کا مالک آ کر اس کو ایسا ہی کرتے پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال پر مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں ابھی دیر ہے، غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھا پی کر متوالا ہونا شروع کرے، تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا اور خوب کوڑے لگا کر اسے بےمانوں میں شامل کرے گا۔ اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، بہت مار کھائے گا، مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے وہ تھوڑی مار کھائے گا، اور جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا ہے اس سے زیادہ مانگیں گے۔ میں زمین پر آگ لگانے آیا ہوں، اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں بہت خوش ہوتا، لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے، اور جب تک وہ ہو نہ لے میں کیا ہی تنگ رہوں گا۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں صلح کرانے نہیں بلکہ جدائی کرانے۔ اب سے ایک گھر کے پانچ آدمی آپس میں مخالفت رکھیں گے، دو سے تین اور تین سے دو۔ باپ بیٹے سے مخالفت رکھے گا اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے، ساس بہو سے اور بہو ساس سے۔
پھر اس نے لوگوں سے بھی کہا،
جب تم بادل کو پچھم سے اٹھتے دیکھتے ہو تو فوراً کہتے ہو کہ میہ برسے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب تم معلوم کرتے ہو کہ دکھنا چل رہی ہے تو کہتے ہو کہ لو چلے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے ریاکارو، زمین اور آسمان کی صورت میں امتیاز کرنا تو تمہیں آتا ہے، لیکن اس زمانے کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا؟ تم اپنے آپ ہی کیوں فیصلہ نہیں کر لیتے کہ واجب کیا ہے؟ جب تو اپنے مدعی کے ساتھ حاکم کے پاس جا رہا ہے تو راہ میں کوشش کر کہ اس سے چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ کو منصف کے پاس کھینچے لے جائے اور منصف تجھ کو سپاہی کے حوالے کرے اور سپاہی تجھے قید میں ڈالے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تو دمڑی دمڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔
لوکا کی انجیل باب 13۔ اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پیلاتس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا۔ اس نے جواب میں ان سے کہا،
ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا، کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گنہگار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوں گے۔ یا کیا وہ 18 آدمی جن پر شلوخ کا برج گرا اور دب کر مر گئے تمہاری دانست میں یروشلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔
پھر اس نے یہ تمثیل کہی،
پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگا ہوا تھا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس میں میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاٹ ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔
پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانے میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی، وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سے سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسو نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا،
اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی۔
اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ عبادت خانے کا سردار اس لیے کہ یسو نے سب کے دن شفا بخشی، خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا،
6 دن ہیں جس میں کام کرنا چاہیے، بس انہی میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔
خداوند نے اس کے جواب میں کہا،
اے ریاکاروں، کہ ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پا पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब न था कि ये जो अब्राहम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सप्त के दिन इस बंध से छुड़ाई जाती?
जब उसने ये बातें कही तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए और सारी भीड़ उन आलिशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। बस वो कहने लगा,
खुदा की बादशाही किसकी मानिंद है? मैं इसको किससे तशबीह दूं? वो राई के दाने की मानिंद है जिसको एक आदमी ने लेकर अपने बाग में डाल दिया। वो उगकर बड़ा दरख्त हो गया और हवा के परिंदों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया।
उसने फिर कहा,
मैं खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दूं? वो खमीर की मानिंद है जिसे एक औरत ने लेकर 3 पैमाने आटे में मिला दिया और होते होते वो सब खमीर हो गया।
वो शहर शहर और गांव गांव तालीम देता हुआ यरूशलेम का सफर कर रहा था और किसी शख्स ने उससे पूछा,
ऐ खुदावंद, क्या नजात पाने वाले थोड़े हैं?
उसने उनसे कहा,
जाफिशानी करो कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और न हो सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर घर का दरवाजा बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े दरवाजा खटखटाकर ये कहना शुरू करो कि ऐ खुदावंद हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब दे कि मैं तुमको नहीं जानता कि कहां के हो, उस वक्त तुम कहना शुरू करोगे कि हमने तो तेरे रूबरू खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में तालीम दी, मगर वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैं नहीं जानता कि तुम कहां के हो, ऐ बदकारों तुम सब मुझसे दूर हो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम अब्राहम और इजहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकला हुआ देखोगे, और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग आकर खुदा की बादशाही की जियाफत में शरीक होंगे, और देखो बाज आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे और बाज अव्वल हैं जो आखिर होंगे।
उसी घड़ी बाज फरीसियों ने आकर उससे कहा,
निकल कर यहाँ से चल दे, क्योंकि हेरोदेस तुझे कत्ल करना चाहता है।
उसने उनसे कहा,
जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शिफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूंगा और तीसरे दिन कमाल को पहुंचूंगा, मगर मुझे आज और कल और परसों अपनी राह पर चलना जरूर है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलम से बाहर हलाक हो। ऐ यरूशलम, ऐ यरूशलम, तू जो नबियों को कत्ल करती है और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करती है, इतनी ही बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे बच्चों को जमा कर लूं, मगर तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे ही लिए छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मुझको उस वक्त तक हरगिज न देखोगे जब तक न कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है।
लूका के इंजील बाब 14। फिर ऐसा हुआ कि वो सप्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर खाना खाने को गया और वो उसकी ताक में रहे, और देखो एक शख्स उसके सामने था जिसे जलंधर था। यीशु ने शरा के आलिमों और फरीसियों से कहा,
सप्त के दिन शिफा बख्शना रवा है या नहीं?
वो चुप रह गए। उसने उसे हाथ लगाकर शिफा बख्शी और रुखसत किया और उनसे कहा,
तुम में से ऐसा कौन है कि जिसका गधा या बैल कुएं में गिर पड़े और वो सप्त के दिन उसको फौरन न निकाल ले?
वो इन बातों का जवाब न दे सके। जब उसने देखा कि मेहमान सदर जगह किस तरह पसंद करते हैं, तो उनसे एक तमसील कही,
जब कोई तुझे शादी में बुलाए तो सदर जगह पर न बैठ कि शायद उसने किसी तुझसे भी ज्यादा इज्जतदार को बुलाया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, फिर तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े, बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, ताकि जब तेरा बुलाने वाला आए तो तुझसे कहे, ऐ दोस्त आगे बढ़कर बैठ, तब उन सब की नजर में जो तेरे साथ खाना खाने बैठे हैं तेरी इज्जत होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा।
फिर उसने अपने बुलाने वाले से भी ये कहा,
जब तू दिन का या रात का खाना तैयार करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को न बुला, ताकि ऐसा न हो कि वो भी तुझे बुलाएं और तेरा बदला हो जाए। बल्कि जब तू ज़ियाफ़त करे तो गरीबों, लुंजों, लंगड़ों, अंधों को बुला, और तुझ पर बरकत होगी, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, और तुझे रास्तबाजों की कयामत में बदला मिलेगा।
जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा,
मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए।
उसने उससे कहा,
एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफ़त की और बहुत से लोगों को बुलाया, और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे, आओ अब खाना तैयार है। इस पर सबने मिलकर उज्र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूं, मैं मिन्नत करता हूं, मुझे माजूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे माजूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्सा होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आ। नौकर ने कहा, ऐ खुदावंद, जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा।
जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा,
अगर कोई मेरे पीछे आए और अपने माँ और बाप और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी न करे, तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब न उठाए और मेरे पीछे न आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में ऐसा कौन है कि जब वो एक बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर लागत का हिसाब न कर ले कि आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है या नहीं। ऐसा न हो कि जब नींव डालकर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हंसना शुरू करें कि इस शख्स ने इमारत शुरू तो की मगर तकमील न कर सका। या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से लड़ने जाता हो और पहले बैठकर मशवरा न कर ले कि आया मैं 10,000 से उसका मुकाबला कर सकता हूँ या नहीं, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है। नहीं तो जब वो हनोज दूर ही है, एलची भेजकर शरायत सुलह की दरखास्त करेगा। बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क न करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से मजेदार किया जाएगा। न वो जमीन के काम का रहा न खाद के, लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। जिसके कान सुनने के हों वो सुन ले।
लूका की इंजील बाब 15। सब महसूल लेने वाले और गुनहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने, और फरीसी और फकीह बुड़बुड़ा कर कहने लगे,
ये आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है।
उसने उनसे ये तमसील कही,
तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़े हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बयाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक न मिल जाए ढूंढता न रहे, फिर जब मिल जाती है तो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुझसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। या कौन सी ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक खो जाए तो वो चराग जलाकर घर में झाड़ू न दे और जब तक मिल न जाए कोशिश से ढूंढती न रहे, और जब मिल जाए तो अपनी दोस्तों और पड़ोसनों को बुलाकर न कहे कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरा खोया हुआ दिरहम मिल गया। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है।
फिर उसने कहा,
किसी शख्स के दो बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना मालो मता उनको बांट दिया। बहुत दिन न गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। जब सब खर्च हो चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के हाथ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सुअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे न देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के कितने ही मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और बोसे लिए। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा जामा जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ है, खो गया था अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे, लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया है क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्सा हुआ और अंदर जाना न चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्मदूली नहीं की, मगर तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा मालो मता कस्बियों में उड़ा दिया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया। बाप ने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था क्योंकि तेरा भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला है।
लूका के इंजील बाप 16। फिर उसने शागिर्दों से भी कहा,
किसी दौलतमंद का एक मुख्तार था, उसकी लोगों ने उससे शिकायत की कि ये तेरा माल उड़ाता है। बस उसने मुख्तार को बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूं, अपनी मुख्तारी का हिसाब दे क्योंकि आगे तो तू मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि क्या करूं क्योंकि मेरा मालिक मुझसे मुख्तारी छीने लेता है, मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से शर्म आती है। मैं समझ गया कि क्या करूं ताकि जब मुख्तारी से मौकूफ हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घर में जगा दें। बस उसने अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे मालिक का क्या आता है। उसने कहा, 100 मन तेल। उसने उससे कहा, अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा, तुझ पर क्या आता है। उसने कहा, 100 मन गेहूं। उसने उससे कहा, अपनी दस्तावेज लेकर 80 लिख दे। और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की, इसलिए उसने होशियारी की थी क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हमजिंसों के साथ मुआमलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दे। जो थोड़े से थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े से थोड़े में बददियानत है वो बहुत में भी बददियानत है। बस जब तुम नाराज दौलत में दयानतदार न ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा। अगर तुम बेगाना माल में दयानतदार न ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा? कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते।
फरीसी जो जरदोस्त थे, इन सब बातों को सुनकर उसे ठट्टे में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा,
तुम वो हो कि आदमियों के सामने अपने आप को रास्तबाज ठहराते हो, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है, क्योंकि जो चीज आदमियों की नजर में आली कद्र है वो खुदा के नजदीक मकरूह है। शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे, उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मारकर उसमें दाखिल होता है, लेकिन आसमान और जमीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ते के मिट जाने से आसान है। जो कोई अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी से ब्याह करे वो जिना करता है, और जो शख्स शौहर की छोड़ी हुई औरत से ब्याह करे वो भी जिना करता है। एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान और शौकत से रहता था, और लाजर नामे गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, अह बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। अब्राहम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका और इसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन वो अब यहां तसल्ली पाता है और तू तड़पता है, और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गढ़ा वाक्य है ऐसा जो यहां से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहें न जा सकें और न कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे पांच भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ऐ बाप अब्राहम, हां अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों की ही नहीं सुनते तो मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी न मानेंगे।
लूका के इंजील बाब 17। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा,
ये नहीं हो सकता कि ठोकरें न लगें, लेकिन उस पर अफसोस है जिसके बायस से लगें। इन छोटों में से एक को ठोकर खिलाने की बनिस्बत उस शख्स के लिए ये मुफीद होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समंदर में फेंका जाता। खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे मुआफ कर, और अगर वो एक दिन में 7 दफा तेरा गुनाह करे और 7वीं दफा तेरे पास आकर कहे कि तौबा करता हूं तो उसे मुआफ कर।
इस पर रसूलों ने खुदावन से कहा,
हमारे ईमान को बढ़ा।
खुदावन ने कहा,
अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग, तो तुम्हारी मानता, मगर तुम में ऐसा कौन है जिसका नौकर हल जोतता या गल्ला बानी करता हो, और जब वो खेत से आए तो उससे कहे कि जल्द आकर खाना खाने बैठे, और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं कमर बांध कर मेरी खिदमत कर, उसके बाद तो खुद खा पी लेना। क्या वो इसलिए उस नौकर का एहसान मानेगा कि उसने उन बातों को जिनका हुक्म हुआ तामील की? इसी तरह तुम भी जब उन सब बातों की जिनका तुमको हुक्म हुआ तामील कर चुको तो कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं, जो हम पर करना फर्ज था वही किया है।
और ऐसा हुआ कि यरूशलम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोड़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा,
ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर।
उसने उन्हें देखकर कहा,
जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ।
और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव में गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा,
क्या 10 पाक साफ न हुए? फिर वो 9 कहां हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और न निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते?
फिर उससे कहा,
उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है।
जब फरीसियों ने उससे पूछा,
खुदा की बादशाही कब आएगी,
तो उसने जवाब में उनसे कहा,
खुदा की बादशाही जाहिरी तौर पर न आएगी, और लोग ये न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है।
उसने शागिर्दों से कहा,
वो दिन आएंगे कि तुमको इब्ने आदम के दिनों में से एक दिन को देखने की आरजू होगी और न देखोगे, और लोग तुमसे कहेंगे कि देखो वहां है या देखो यहां है, मगर तुम चले ना जाना, ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से कौंध कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिन में जाहिर होगा। लेकिन पहले जरूर है कि वह बहुत दुख उठाए और इस जमाने के लोग उसे रद्द करें, और जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा, कि लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होती थी उस दिन तक जब नूह किश्ती में दाखिल हुआ और तूफान में आकर सबको हलाक किया, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और खरीदो फरोख करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे, लेकिन जिस दिन लूत सदोम से निकला आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक किया, इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका असबाब घर में हो वो उसे लेने को न उतरे, और इसी तरह जो खेत में हो वो पीछे को न लौटे। लूत की बीवी को याद रखो, जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वो उसको जिंदा रखेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि उस रात 2 आदमी एक चारपाई पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा।
उन्होंने जवाब में उससे कहा,
आए खुदावन, ये कहाँ होगा?
उसने उनसे कहा,
जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध भी जमा होंगे।
लूका की इंजील बाब 18। फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत न हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही,
किसी शहर में काजी था, न वो खुदा से डरता और न आदमी की कुछ परवाह करता था, और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसे तक तो न चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूंगा, ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे।
खुदावन ने कहा,
सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, बस क्या खुदा अपने बुरगुजीदों का इंसाफ न करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वह उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा, तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा?
फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे ये तमसील कही,
2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़े होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि या खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिंद नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दही की देता हूं। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा कि ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि यह शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा।
फिर लोग अपने छोटे बच्चों को भी उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, और शागिर्दों ने देखकर उनको झिड़का। मगर यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा,
बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों की ही है। मैं सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल न करे वो उसमें हरगिज दाखिल न होगा।
फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया,
अनेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं?
यीशु ने उससे कहा,
तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, जिना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर।
उसने कहा,
मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है।
यीशु ने यह सुनकर उससे कहा,
अभी तुझ में एक बात की कमी है, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले।
यह सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। यीशु ने उसको देखकर कहा,
दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो।
सुनने वालों ने कहा,
तो फिर कौन नजात पा सकता है?
उसने कहा,
जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है।
पतरस ने कहा,
देख, हम तो अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं।
उसने उनसे कहा,
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या माँ बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो, और इस जमाने में कई गुना ज्यादा न पाए, और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी।
फिर उसने उन 12 को साथ लेकर उनसे कहा,
देखो, हम यरूशलम को जाते हैं, और जितनी बातें नबियों की मार्फत लिखी गई हैं इब्ने आदम के हक में पूरी होंगी, क्योंकि वो गैर कौम वालों के हवाले किया जाएगा, और लोग उसको ठट्टों में उड़ाएंगे और बेइज्जत करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसको कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे, और वो तीसरे दिन जी उठेगा।
लेकिन उन्होंने इनमें से कोई बात ना समझी, और ये कौल उन पर पोशीदा रहा, और इन बातों का मतलब उनकी समझ में ना आया। जब वो चलते चलते यरीहो के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा,
ये क्या हो रहा है?
उन्होंने उसे खबर दी,
यीशु नासरी जा रहा है।
उसने चिल्ला कर कहा,
अय यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर।
जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे,
चुप रहे,
मगर वो और भी चिल्लाया,
ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर।
यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे ये पूछा,
तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं?
उसने कहा,
ऐ खुदावन, ये कि मैं बीना हो जाऊं।
यीशु ने उससे कहा,
बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया।
वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम्द की। लूका की इंजील बाब 19। वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो, जक्काई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख न सकता था, इसलिए कि उसका खत छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा,
ऐ ज़काई, नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है।
वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ाकर कहने लगे,
वो तो एक गुनहगार के घर जा उतरा।
और ज़काई ने खड़े होकर खुदावन से कहा,
आए खुदावन, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ।
यीशु ने उससे कहा,
आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्न आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है।
जब वो इन बातों को सुन रहे थे तो उसने एक तमसील भी कही, इसलिए कि यरूशलेम के नजदीक था और वो गुमान करते थे कि खुदा की बादशाही अभी जाहिर हुआ चाहती है। बस उसने कहा,
एक अमीर शख्स दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशर्फियां दी और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना। लेकिन उसके शहर के आदमी उससे अदावत रखते थे और उसके पीछे एलचियों की जबानी कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया तो ऐसा हुआ, उन नौकरों को बुला भेजा जिनको अशर्फियां दी थी, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। पहले ने हाजिर होकर कहा कि या खुदावंद, तेरी अशर्फी से 10 अशर्फियां पैदा हूं। उसने उससे कहा, ऐ अच्छे नौकर, शाबाश, इसलिए कि तू निहायत थोड़े में दयानतदार निकले, अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। दूसरे ने आकर कहा, ऐ खुदावंद, तेरी अशर्फी से 5 अशर्फियां पैदा हुई। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 शहरों का हाकिम हो। तीसरे ने आकर कहा, ऐ खुदावंद, देख, तेरी अशर्फी ये है जिसको मैंने रुमाल में बांध रखा, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू सख्त आदमी है। जो तूने नहीं रखा है उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैं तुझको तेरे ही मुंह से मुल्जिम ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि मैं सख्त आदमी हूं, और जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो नहीं बोया उसे काटता हूं। फिर तूने मेरा रुपया साहूकार के हाथ क्यों नहीं रखा कि मैं आकर उसे सूद समेत ले लेता। और उसने उनसे कहा जो पास खड़े थे कि वो अशर्फी उससे ले लो और 10 अशर्फी वाले को दे दो। उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावन, उसके पास 10 अशर्फियां तो हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मगर मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा था कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहां लाकर मेरे सामने कत्ल करो।
ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है, बैतफगे और बैतनिया के नजदीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को यह कहकर भेजा,
सामने के गांव में जाओ, और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। अगर कोई तुमसे पूछे कि इसे क्यों खोलते हो, तो कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है।
बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा,
इस बच्चे को क्यों खोलते हो?
उन्होंने कहा,
खुदावंद को इसकी जरूरत है।
वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा, तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजूदों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हमद करने लगी।
मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है, आसमान पर सुला और आलम बाला पर जलाल।
भीड़ में से बाद फरीसियों ने उससे कहा,
अरे उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे।
उसने जवाब में कहा,
मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे।
जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा,
काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझमें हैं जमीन पर दे पटकेंगे और तुझमें किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को न पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई।
फिर वो हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा और उनसे कहा,
लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया है।
और वो हर रोज हैकल में तालीम देता था, मगर सरदार काहिन और फकीर और कौम के रईस उसके हलाक करने की कोशिश में थे, लेकिन कोई तदबीर ना निकाल सके कि ये किस तरह करें, क्योंकि सब लोग बड़े शौक से उसकी सुनते थे। लूका की इंजील बाब 20। उन दिनों में एक रोज ऐसा हुआ कि जब वो हैकल में लोगों को तालीम और खुशखबरी दे रहा था तो सरदार काहिन और फकीर बुजुर्गों के साथ उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे,
हमें बता तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है या कौन है जिसने तुझको ये इख्तियार दिया है।
उसने जवाब में उनसे कहा,
मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ योहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से।
उन्होंने आपस में सलाह की,
अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो वह कहेगा तुमने क्यों उसका यकीन ना किया, और अगर कहे कि इंसान की तरफ से तो सब लोग हमको संसार करेंगे क्योंकि उन्हें यकीन है कि यूहन्ना नबी था।
बस उन्होंने जवाब दिया,
हम नहीं जानते कि किसकी तरफ से था।
यीशु ने उनसे कहा,
मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ।
फिर उसने लोगों से ये तमसील कहनी शुरू की,
एक शख्स ने ताकिस्तान लगाकर बागबानों को ठेके पर दिया और एक बड़ी मुद्दत के लिए परदेश चला गया, और फल के मौसम पर उसने एक नौकर बागबानों के पास भेजा ताकि वो ताकिस्तान के फल का हिस्सा उसे दे, लेकिन बागबानों ने उसको पीट कर खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और नौकर भेजा, उन्होंने उसको भी पीट कर और बेइज्जत करके खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा, उन्होंने उसको भी जख्मी करके निकाल दिया। इस पर ताकिस्तान के मालिक ने कहा कि क्या करूं, मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद उसका लिहाज करें। जब बागबानों ने उसे देखा तो आपस में सलाह करके कहा, यही वारिस है, इसे कत्ल करें कि मीरास हमारी हो जाए। बस उसको ताकिस्तान से बाहर निकालकर कत्ल किया। अब ताकिस्तान का मालिक उनके साथ क्या करेगा, वो आकर उन बागबानों को हलाक करेगा और ताकिस्तान औरों को दे देगा।
उन्होंने यह सुनकर कहा,
खुदा ना करे।
उसने उनकी तरफ देखकर कहा,
फिर ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को मैमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा।
उसी घड़ी फकीहों और सरदार काहिनों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर लोगों से डरे क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने ये तमसील हम पर कही, और वो उसकी ताक में लगे और जासूस भेजे कि रास्तबाज बनकर उसकी कोई बात पकड़ें ताकि उसको हाकिम के कब्जे और इख्तियार में दे दें। उन्होंने उससे ये सवाल किया,
आए उस्ताद, हम जानते हैं कि तेरा कलाम और तालीम दुरुस्त है और तू किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है, हमें कैसर को खिराज देना रवा है या नहीं।
उसने उनकी मक्कारी मालूम करके उनसे कहा,
एक दिनार मुझे दिखाओ, उस पर किसकी सूरत और नाम है।
उन्होंने कहा,
कैसर का।
उसने उनसे कहा,
बस जो कैसर का है कैसर को और जो खुदा का है खुदा को अदा करो।
वो लोगों के सामने उस कौल को पकड़ ना सके बल्कि उसके जवाब से ताजुब करके चुप हो रहे। फिर सदूकी جو کہتے ہیں کہ قیامت ہے ہی نہیں، ان میں سے باز نے اس کے پاس آ کر یہ سوال کیا،
اے استاد، موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بے حیا ہوا بھائی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو کر لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ چنانچہ سات بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، پھر دوسرے نے اسے لیا اور تیسرے نے بھی، اس طرح ساتوں بے اولاد مر گئے، آخر کو وہ عورت بھی مر گئی۔ پس قیامت میں وہ عورت ان میں سے کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ وہ ساتوں کی بیوی بنی تھی؟
یسو نے ان سے کہا،
اس جہان کے فرزندوں میں تو بیاہ شادی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہان کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھیں، ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی، کیونکہ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے۔ لیکن اس بات کو کہ مردے جی اٹھتے ہیں، موسیٰ نے بھی جھاڑی کے ذکر میں ظاہر کیا ہے، چنانچہ وہ خداوند کو ابراہم کا خدا اور الحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کہتا ہے، لیکن خدا مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں۔
تب بعض فقیہوں نے جواب میں اس سے کہا،
اے استاد، تو نے خوب فرمایا،
کیونکہ ان کو اس سے پھر کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ پھر اس نے ان سے کہا،
مسیح کو کس طرح داؤد کا بیٹا کہتے ہیں؟ داؤد تو زبور میں آپ کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ بس داؤد تو اسے خداوند کہتا ہے، پھر وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا؟
جب سب لوگ سن رہے تھے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا،
فقیہوں سے خبردار رہنا، جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنے کا شوق رکھتے ہیں اور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیوں اور ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں، وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں، انہیں زیادہ سزا ہوگی۔
لوقا کی انجیل باب 21۔ پھر اس نے آنکھ اٹھا کر ان دولت مندوں کو دیکھا جو اپنی نظروں کے روپے ہیکل کے خزانے میں ڈال رہے تھے، اور ایک کنگال بیوہ کو بھی اس میں دو ڈمڑیاں ڈالتے دیکھا۔ اس پر اس نے کہا،
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ ان سب نے تو اپنی مال کی بہتات سے نظر کا چندہ ڈالا، لیکن اس بیوہ نے اپنی ناداری کی حالت میں جتنی روزی اس کے پاس تھی سب ڈال دی۔
اور جب بعض لوگ ہیکل کی بابت کہہ رہے تھے،
وہ نفیس پتھروں اور نظر کی ہوئی چیزوں سے آراستہ ہے،
اس نے کہا،
وہ دن آئیں گے کہ ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔
انہوں نے اس سے پوچھا،
اے استاد، پھر یہ باتیں کب ہوں گی، اور جب وہ ہونے کو ہوں اس وقت کا کیا نشان ہے؟
اس نے کہا،
خبردار گمراہ نہ ہونا، کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے، تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا، اور جب لڑائیوں اور فسادوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان کا پہلے واقع ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت فوراً خاتمہ نہ ہوگا۔
پھر اس نے ان سے کہا،
قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور بڑے بڑے پھونچال آئیں گے، اور جا بجا کال اور مری پڑے گی، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی، لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے، اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالے کریں گے، اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے، اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے، اور یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا۔ بس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں گے کہ کیا جواب دیں، کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے کسی مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا، اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے، بلکہ وہ تم میں سے بعض کو مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے سبب سے सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी पीका ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। फिर जब तुम यरूशलम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नजदीक है। उस वक्त जो यहूदिया में हों पहाड़ पर भाग जाएं, और जो यरूशलम के अंदर हों बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हों शहर में न जाएं, क्योंकि ये इंतकाम के दिन होंगे जिनमें सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो जाएंगी। उन पर अफसोस है जो इन दिनों में हामिला हों और जो दूध पिलाती हों, क्योंकि मुल्क में बड़ी मुसीबत और इस कौम पर गजब होगा, और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो, यरूशलम गैर कौमों से पामाल होती रहेगी, और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे, और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी, और डर के मारे जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान न रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मुखलिसी नजदीक होगी।
और उसने उनसे एक तमसील कही,
अंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो, जो ही इनमें कोपलें निकलती हैं, तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि अब गर्मी नजदीक है। इस तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें न हो लें, ये नस्ल हरगिज तमाम न होगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज न टलेंगी। बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशेबाजी और जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं, और वो दिन तुम पर एक फंदे की तरह नागहां आ पड़े, क्योंकि जितने लोग रुए जमीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो, ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो।
और वो हर रोज हैकल में तालीम देता था, और रात को बाहर जाकर उस पहाड़ पर रहा करता था जो जैतून का कहलाता है, और सुबह सवेरे सब लोग उसकी बातें सुनने को हैकल में उसके पास आया करते थे। लूका की इंजील बाब 22। और ईद फतीर, जिसको ईद फसा कहते हैं, नजदीक थी, और सरदार काहिन और फकीह मौका ढूंढ रहे थे कि उसे किस तरह मार डालें, क्योंकि लोगों से डरते थे, और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और उन 12 में शुमार किया जाता था। उसने जाकर सरदार काहिनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया
कि उसको किस तरह उनके हवाले करें।
वो खुश हुए और उसे रुपए देने का इकरार किया। उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि उसे बगैर हंगामा उनके हवाले कर दे। और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसह जुबा करना फर्ज था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा,
जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो।
उन्होंने उससे कहा,
तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें?
उसने उनसे कहा,
देखो शहर में दाखिल होते ही तुम एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा, जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना, और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुमसे कहता है, वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं? वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना।
उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया, और फसह तैयार किया। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा, और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा,
मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि इसे कभी न खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा न हो।
फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा,
इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा अब से कभी न पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही न आ ले।
फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी,
ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो।
और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया,
ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है, मगर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीले से वो पकड़वाया जाता है।
इस पर वो आपस में पूछने लगे,
हममें से कौन है जो ये काम करेगा,
और उनमें ये तकरार भी हुई कि हममें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा,
गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते हैं और जो उन पर इख्तियार रखते हैं वो खुदावंदे नेमत कहलाते हैं, मगर तुम ऐसे न होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानिंद और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानिंद बने, क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा या वो जो खिदमत करता है, क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है, लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानिंद हूं, मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूं, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्त अदालत पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता न रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना।
उसने उससे कहा,
ऐ खुदावन तेरे साथ मैं कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ।
उसने कहा,
ऐ पतरस मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ख बांध न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न करे कि मुझे नहीं जानता।
फिर उसने उनसे कहा,
जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूती बगैर भेजा था तो क्या तुम किसी चीज के मोहताज रहे थे?
उन्होंने कहा,
किसी चीज के नहीं।
उसने उनसे कहा,
मगर अब जिसके पास बटुआ हो वो उसे ले, और इसी तरह झोली भी, और जिसके पास न हो वो अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीदे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया उसका मेरे हक में पूरा होना जरूर है, इसलिए जो कुछ मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होना है।
उन्होंने कहा,
ऐ खुदावन देख यहाँ 2 तलवारें हैं।
उसने उनसे कहा,
बहुत हैं।
फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए, और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा,
दुआ करो कि आजमाइश में न पड़ो।
और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर के टप्पे आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा,
हे बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो।
और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवियत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदे होकर जमीन पर टपकता था। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया और उनसे कहा,
तुम सोते क्यों हो, उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो।
वो ये कह ही रहा था कि देखो एक बड़ी भीड़ आई, और उन 12 में से वो जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे था। वो येसु के पास आया कि उसका बोसा ले। येसु ने उससे कहा,
ऐ यहूदा क्या तू बोसा लेकर इब्न आदम को पकड़वाता है?
जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने वाला है तो कहा,
ऐ खुदावन क्या हम तलवार चलाएं?
और उनमें से एक ने सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दहना कान उड़ा दिया। येसु ने जवाब में कहा,
इतने पर किफायत करो,
और उसके कान को छूकर उसको अच्छा किया। फिर येसु ने सरदार काहिनों और हैकल के सरदारों और बुजुर्गों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा,
क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? जब मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला। लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है।
फिर वो उसे पकड़कर ले चले और सरदार काहिन के घर में ले गए, और पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे जाता था। और जब उन्होंने सहन के बीच में आग जलाई और मिलकर बैठे तो पतरस उनके बीच में बैठ गया। एक लौंडी ने उसे आग की रोशनी में बैठा हुआ देखकर उस पर खूब निगाह की और कहा,
ये भी उसके साथ था।
मगर उसने ये कहकर इनकार किया,
ऐ औरत, मैं उसे नहीं जानता।
थोड़ी देर के बाद कोई और उसे देखकर कहने लगा,
तू भी उन्हीं में से है।
पतरस ने कहा,
मियाँ, मैं नहीं हूँ।
कोई घंटे भर के बाद एक और शख्स यकीनी तौर से कहने लगा,
ये आदमी बेशक उसके साथ था, क्योंकि गलीली है।
पतरस ने कहा,
मियाँ, मैं नहीं जानता तू क्या कहता है।
वो कह ही रहा था कि उसी दम मुर्ग ने बांग दी, और खुदावंद ने फिर कर पतरस की तरफ देखा, और पतरस को खुदावंद की वो बात याद आई जो उससे कही थी,
आज मुर्ग की बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा।
और वो बाहर जाकर जार जार रोया, और जो आदमी यीशु को पकड़े हुए थे उसको ठट्टों में उड़ाते और मारते थे, और उसकी आंखें बंद करके उससे पूछते थे,
नबू असले बता, तुझे किसने मारा।
और उन्होंने ताने से और भी बहुत सी बातें उसके खिलाफ कही। जब दिन हुआ तो सरदार काहिन और फकीह यानी कौम के बुजुर्गों की मजलिस जमा हुई, और उन्होंने उसे अपनी सदर अदालत में ले जाकर कहा,
अगर तू मसीह है तो हमसे कह दे।
उसने उनसे कहा,
अगर मैं तुमसे कहूँ तो यकीन न करोगे, और अगर पूछूं तो जवाब न दोगे, लेकिन अब से इब्न आदम कादिर मुतलक खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है।
इस पर उन सब ने कहा,
बस क्या तू खुदा का बेटा है।
उसने उनसे कहा,
तुम खुद कहते हो क्योंकि मैं हूँ।
उन्होंने कहा,
अब हमें गवाही की क्या हाजत रही, क्योंकि हमने खुद उसी के मुंह से सुन लिया है।
लूका की इंजील बाब 23। फिर उनकी सारी जमात उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई, और उन्होंने उस पर इल्जाम लगाना शुरू किया,
इसे हमने अपनी कौम को बहकाते और कैसर को खिराज देने से मना करते और अपने आप को मसीह बादशाह कहते पाया।
पिलातुस ने उससे पूछा,
क्या तू यहूदियों का बादशाह है।
उसने उसके जवाब में कहा,
तू खुद कहता है।
पिलातुस ने सरदार काहिनों और आम लोगों से कहा,
मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता।
मगर वो और भी जोर देकर कहने लगे,
ये तमाम यहूदिया में बल्कि गलील से लेकर यहाँ तक लोगों को सिखा कर उभारता है।
ये सुनकर पिलातुस ने पूछा,
क्या ये आदमी गलीली है।
और ये मालूम करके कि हेरोदेस की अमलदारी का है, उसे हेरोदेस के पास भेजा, क्योंकि वो भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोदेस ये सब को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो मुद्दत से उसे देखने का मुश्ताक था, इसलिए कि उसने उसका हाल सुना था और उसका कोई मुजीजा देखने का उम्मीदवार था। और वो उससे बहुतेरी बातें पूछता रहा, मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। और सरदार काहिन और फकीह खड़े हुए जोर शोर से उस पर इल्जाम लगाते रहे। फिर हेरोदेस ने अपने सिपाहियों समेत उसे जलील किया और ठट्टों में उड़ाया, और चमकदार पोशाक पहनाकर उसको पिलातुस के पास वापस भेजा। और उसी दिन हेरोदेस और पिलातुस आपस में दोस्त हो गए, क्योंकि पहले उनमें दुश्मनी थी। फिर पिलातुस ने सरदार काहिनों और सरदारों और आम लोगों को जमा करके उनसे कहा,
तुम इस शख्स को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने ही उसकी तहकीकात की, मगर जिन बातों का इल्जाम तुम उस पर लगाते हो उनकी निस्बत न मैंने उसमें कुछ कसूर पाया और न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास वापस भेजा है, और देखो उससे ऐसा कोई फेल सरजद नहीं हुआ जिससे वो कत्ल के लायक ठहरता, बस मैं उसको पिटवा कर छोड़े देता हूँ।
उसे हर ईद में जरूर था कि किसी को उनके खातिर छोड़ दे, वो सब मिलकर चिल्ला उठे,
चले जा और हमारी खातिर बरप्पा को छोड़ दे।
ये किसी बगावत के बाइस जो शहर में हुई थी खून करने के सबब से कैद में डाला गया था, मगर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने के इरादे से फिर उनसे कहा, लेकिन वो चिल्लाकर कहने लगे, उसने तीसरी बार उनसे कहा,
क्यों इसने क्या बुराई की है? मैंने इसमें कत्ल की कोई वजह नहीं पाई, बस मैं इसे पिटवा कर छोड़े देता हूँ।
मगर वो चिल्ला चिल्ला कर सर होते रहे और उनका चिल्लाना कारगर हुआ। बस पिलातुस ने हुक्म दिया,
उनकी दरख्वास्त के मुआफिक हो,
और जो शख्स बगावत और खून करने के सबब से कैद में पड़ा था और जिसे उन्होंने मांगा था उसे छोड़ दिया, मगर यीशु को उनकी मर्जी के मुआफिक सिपाहियों के हवाले किया। और जब उसको लिए जाते थे तो उन्होंने शमौन नाम एक कुरेनी को जो देहात से आता था पकड़कर सलीब उस पर रख दी कि यीशु के पीछे पीछे ले चले। और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती पीटती थीं, उसके पीछे पीछे चली। यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा,
ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए न रो बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिनमें वो कहेंगे कि मुबारक है वो बांझे हैं और वो पेट जो ना जने और वो छातियां जिन्होंने दूध ना पिया। उस वक्त वो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो और टीलों से कि हमें छुपा लो, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाए।
और वो दो और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाएं तरफ। यीशु ने कहा,
ऐ बाप उनको माफ कर क्योंकि ये जानते हैं कि क्या करते हैं।
और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर खुरा डाला, और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्टे मार मार कर कहते थे,
इसने औरों को बचाया, अगर यह खुदा का मसीह और उसका बरगुजीदा है तो अपने आप को बचाए।
सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्टा मारा और कहा,
अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा।
और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा,
क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को हाँ और हमको बचा।
मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया,
क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया।
फिर उसने कहा,
यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद।
उसने उससे कहा,
मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा।
फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मक़दिस का पर्दा बीच से फट गया फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा,
ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ।
और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा,
बेशक ये आदमी रास्तबाज था।
और जितने लोग इस नजारे को आए थे ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए, और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी ये बातें देख रही थीं। और देखो, यूसुफ नाम एक शख्स मुशीर था, जो नेक और रास्तबाज आदमी था और उनकी सलाह और काम से रजामंद ना था। ये यहूदियों के शहर अरमतिया का बाशिंदा और खुदा की बादशाही का मुंतजिर था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और उसको उतार कर महीन चादर में लपेटा, फिर यह कब्र के अंदर रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी रखा न गया था। वो तैयारी का दिन था और सब्त का दिन शुरू होने को था, और उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से आई थीं, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और ये भी कि उसकी लाश किस तरह रखी गई, और लौटकर खुशबूदार चीजें और इत्र तैयार किया। लूका की इंजील बाब 24। सब्त के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई, और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावन यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, दो शख्स बुर्राक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा,
जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे।
उसकी बातें उन्हें याद आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी। जिन्होंने रसूलों से ये बातें कही वो मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थी, मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस माजरे से ताज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। और देखो, उसी दिन उनमें से दो आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इमाउस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासले पर है, और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़े हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछपाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा,
ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो?
वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम क्लियोपास था, जवाब में उससे कहा,
क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है?
उसने उनसे कहा,
क्या हुआ है?
उन्होंने उससे कहा,
यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया, लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया,
और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है, जो सवेरे ही कब्र पर गई थी और जब उसकी लाश न पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा, उन्होंने कहा वो जिंदा है, और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा।
उसने उनसे कहा,
اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کو ماننے میں سست اعتقادوں، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟
پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا،
ہمارے ساتھ رہے کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا۔
بس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے۔ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہا،
جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کے بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟
بس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلیم کو لوٹ گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا۔ وہ کہہ رہے تھے،
خداوند بے شک جی اٹھا اور شمعون کو دکھائی دیا ہے،
اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا،
تمہاری سلامتی ہو۔
مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا،
تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔
اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا،
کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟
انہوں نے اسے بھنی ہوئی مچھلی کا قتلہ دیا، اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا۔ پھر اس نے ان سے کہا،
یہ میری وہی باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب میں تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔
پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا،
یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا۔ لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اسی شہر میں ٹھہرے رہو۔
پھر وہ انہیں بیتنیا کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلیم کو لوٹ گئے، اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔